समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। आज के संक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, याद करेंगे कुछ मशहूर हस्तियों को और जानेंगे कैसा रहेगा आज का मौसम। आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी सायरा मुस्तफा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। फरहत हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू, तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ शो विद द हेडलाइंस। फरहत
जी, सारा बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री आज दोपहर में डिंडोरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे शाम में कल्याण में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो एलबीएस मार्ग पर श्रेयस सिनेमा से शुरू होगा, गांधी मार्केट पर समाप्त होगा। ये रोड शो मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के चुनाव प्रचार के सिलसिले में आयोजित होगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करेंगे।
सीनियर लीडर्स एंड स्टार कैंपेनर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विल कैंपेन इन उत्तर प्रदेश टुडे। Senior BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh will campaign for BJP candidate and Union Minister Kaushal Kishore, who is seeking a second term from Mohan Lal Ganj constituency. Senior BJP leader and UP Chief Minister Yogi Adityanath will campaign in Mahoba Jalaon, Jhansi and Lucknow. He will hold a roadshow in Jhansi district. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav will address a political rally in Gand Sari Assembly seat of Balrampur district, where by-elections will be held in the sixth phase. He will also campaign for INDIA candidate in Faizabad constituency today. Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Minister of Himachal Pradesh Sukhinder Singh Sukhu and Congress General Secretary Priyanka Gandhi will campaign in Rae Bareli today for Rahul Gandhi. Bahujan Samaj Party Supremo Mayawati will address a political rally in Atara area of Banda constituency. The government has asked citizens to avoid those fake calls wherein callers threaten to disconnect their mobile numbers. Department of Telecommunications has issued an advisory urging citizens not to take such fake calls. The department has also issued an advisory about WhatsApp calls from foreign origin mobile numbers impersonating government officials and duping people. It also advised citizens to report such incidents at cyber crime helpline number 1930.
देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसमें उच्च कौशल मानकों का प्रदर्शन होगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बताया कि इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र भाग लेंगे। विभिन्न उद्योगों के 400 से अधिक विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। चार दिन की प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पारंपरिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक के 61 क्षेत्रों में विविधतापूर्ण कौशल और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
US President Joe Biden has imposed heavy tariffs on Chinese electric vehicles, batteries, steel, solar cells and aluminium, saying it would ensure that American workers are not held back by unfair trade practices. These include a 100% tariff on electric vehicles, a 50% tariff on semiconductors and a 25% tariff each on electric vehicle batteries from China. In his address to the nation from the Rose Garden of the White House, Mr. Biden said, US can continue to buy any kind of car they want, but it will never allow China to unfairly control the market for these cars. Mr. Biden alleged that for years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries. The tariff increase will cover $18 billion in Chinese products. Tariffs on EVs, steel and aluminium and solar cells will take effect this year and next year for chips. U.S. Trade Representative Catherine Tai said the administration has provided a pre-notification to Beijing.
मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोंकण के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आज से शनिवार तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग और बिहार में भी बृहस्पतिवार से अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 मई तक देश के दक्षिणी क्षेत्रों में गरज के साथ तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं मध्य और पूर्वी भारत में भी आज गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
On to sports now, the Indian men's hockey team left for Antwerp in Belgium for the European leg of the FIH Hockey Pro League. Indian captain Harmanpreet Singh has emphasized the significance of the tournament in terms of preparation for Paris Olympics in July. According to him, it will not only give insights into their own game and how they are faring as a unit, but the matches will also provide them insights into the opponent's game. India will begin their European leg on 22nd of May with their opening match against Argentina, followed by back-to-back matches against Belgium on 23rd May and 25th May. They will take on Argentina again on 26th of May before moving on to the final leg in London, where they will play Germany on June 1 and 8 and take on host Great Britain on June the 2nd and 9th. Another story from the world of sports, India's ace table tennis player Manika Batra became the first Indian woman paddler to break into the top 25 of the world women's singles rankings. She rose to her career best ranking of 24 following her success in the Saudi Smash last week. She also equaled G. Satyan's 5-year-old record for the highest rank achieved by an Indian in singles table tennis. Manika, the 2018 Commonwealth Games gold medalist in individual and team categories, jumped 15 spots following her run in Jeddah, where she reached the quarterfinals.
और आईपीएल क्रिकेट में लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हरा दिया है। वहीं आईपीएल में आज गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय समाचार और अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो सारा से सुनते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या है खास।
Thanks, sir. Let's start with Early Chennai. Tamil Nadu has stepped up surveillance in border districts after death and cases of West Nile virus were reported in Kerala. The Directorate of Public Health has asked officials in border districts to step up fever surveillance and insisted that people must seek medical attention if they have symptoms of the disease. The Directorate of Public Health has said that some patients may develop a fever, headache, body aches, joint pain, vomiting and rash. While most people fully recover, some may experience ongoing weakness and fatigue or more severe complications. Complications also include inflammation of the brain known as encephalitis or of the membranes of the brains surrounding the brain and spinal cord known as meningitis. The 5th Tamil Nadu State Youth Athletic Championships for under 20 and 23 years will be held at Tamil Nadu Sports University on the 18th and 19th of this month. Nearly 1,200 competitors will compete in this two-day event. 59 events in the boys' section and 57 in the girls' section are being planned from 5:30 a.m. to 6 p.m. The winners will get a merit certificate and medals. Moving on to Bengaluru, the Karnataka High Court has awarded 8 lakh rupees compensation to the family of a woman who died in a train accident. The victim, Jayamma, and her sister, Ratanamma, had purchased tickets to Mysuru by Tirupati passenger train, but by mistake they boarded Tuticorin Express. The sisters realized their mistake after the train started moving and jumped on the platform from the moving train. Jayamma succumbed to the injuries. The incident happened in 2014 and the family had moved to the Railway Claims Tribunal. In 2016, the tribunal rejected the petition, saying that the passengers should have pulled the alarm chain or deboarded at the next station. It pointed out that suicide and self-inflicted injuries cannot be compensated. When family members appealed before the High Court, Justice H.P. Sandesh ruled after the hearing that the tribunal is wrong in defining the death as due to self-inflicted injury. He quoted the Supreme Court judgment which says that death or injury in the course of boarding and deboarding a train is an untoward incident and needs to be compensated. Moving on to Hyderabad, in Telangana, a total of 66.3% voters cast their vote in all 17 Lok Sabha constituencies and a by-election of Secunderabad Cantonment Assembly segment in the incident-free polling. Revealing the details, Chief Electoral Officer Vikas Raj informed that a total of 2,20,24,806 voters out of over 3,32,00,000 electors have participated in voting, which is 66.3% of the total electorate. Out of them, over 2,10,000 voters exercised their franchise in voter facilitation centres, postal voting centres and through home voting. The 65.67% votes polled at polling stations is almost 3% higher compared to the voting of 2019 elections. So, Farhad, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सायरा, राजधानी दिल्ली में भी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं। भाजपा नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा और भाजपा नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल चुनाव प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने गोकुलपुरी और गंगा विहार इलाके में कल पदयात्रा की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में 25 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत एक वृद्ध महिला को उसके परिजनों से मिलवाया। 68 वर्षीय यह महिला असम से अपने परिजनों के साथ दिल्ली घूमने आई थी और लाल किला घूमने के दौरान लापता हो गई थी। उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा ने बताया कि महिला के लापता होने की सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने तत्परता दिखाई और महिला को लाल किला क्षेत्र से ही तलाश कर एक वृद्ध आश्रम में भेज दिया और वहां उसको परिजनों से मिलवाया गया। महाराष्ट्र के रुख कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव स्थगित कर दिए हैं। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह इन चुनावों की घोषणा भी की थी। इनमें 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब चुनाव 10 जून को होंगे। इनमें नासिक मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुंबई मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। इन सीटों के मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त होगा। कोलकाता की बात करें तो विभिन्न तेल वितरण कंपनियां कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में एलपीजी ग्राहकों के साथ आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। फिलहाल पूरे भारत में ये 20% है। पूरा ऑपरेशन पश्चिम बंगाल में होम विजिट के जरिए किया जाएगा। किसी को कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और सबसे जो है वो खबर आ रही है दिल्ली से। विश्वविद्यालय स्तर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज दिल्ली के केंद्रों पर होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि ये परीक्षा अब 29 मई को आयोजित की जाएगी। नए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि आज दिल्ली के केंद्रों में होने वाली रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य विषयों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि दिल्ली के अलावा सभी अन्य शहरों में परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। और श्रोता, महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में गर्मी जारी रहेगी। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
And if you talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, Farhad, so all these three cities will have a cloudy sky and there is a possibility of light rain as well in all these three cities. So, keh sakte hain ki garmi ki jo garmi thi wo ab thodi kam ho rahi hai, but I think South India will have प्री मानसून।
जी हाँ, कहीं कहीं बारिश की संभावना आज व्यक्त की गई है और कहीं जो है गर्मी का जो प्रकोप है वो जारी
है। यस, सो वेल इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर्स इन चेन्नई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 व्हाइल मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। इन बेंगलुरु देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 व्हाइल मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। Hyderabad is also expected to have a thunderstorm or dust storm as well, and temperatures in Hyderabad will hover between 26 and 37 degrees Celsius.
और श्रोता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है 15 मई 2024, तो आज के दिन क्या कुछ हुआ इतिहास में, आइए जान लेते हैं। आज ही के दिन 1935 की अगर बात करें तो मॉस्को मेट्रो लोगों के लिए खोला गया था।
If we take you back to the year 1878, well, on this day, Shivnath Shastri and Anand Mohan Bose, under the leadership of the younger group of Brahmo Samaj, rebelled and started Sadharan Brahmo Samaj.
1918 में आज के दिन अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई।
On this day, 1949, Madhya Union formally merged with Greater Rajasthan.
1811 में आज के दिन परागवे ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी.
Also, Farhad, today, on this day, in 1958, Aruna Asif Ali became the mayor of Delhi.
और 1796 की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी सैनिकों ने मिलान पर कब्जा आज के दिन किया था.
And well, on this day, 1998, Pandit Ravi Shankar, who was, of course, a great exponent of sitar, he received the 1998 Polar Music Award.
1610 में आज के दिन पेरिस की संसद ने लुई तेरहवें को फ्रांस का राजा नियुक्त किया था. और तो ये तो थे इतिहास की बात, और अब याद कर लेते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी पर लटकने वाले सुखदेव थापर को, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था. बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज के अत्याचारों को देखा और समझना शुरू कर दिया था, जिस कारण इन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई थी. 1919 में जब सुखदेव महज 12 वर्ष के थे तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए भीषण नरसंहार का स्कूली बालक सुखदेव के मन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा. स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने 1922 लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां भगत सिंह से इनकी मुलाकात हुई.
और कह सकते हैं तभी से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें दुखद तरीके से दे ऑल वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च. नॉनदलेस आई थिंक दे वुड बी रिमेम्बर्ड बाय इंडियंस. वी ओ अ लॉट टू सुखदेव एज वेल. वी ऑल नो दैट ही वाज अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एंड द नौजवान भारत सभा. ही ऑल्सो इनिशिएटेड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन पंजाब एंड अदर रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. He was the chief of the Punjab unit of HSRA and was instrumental in making decisions. In fact, Farhad, he took part in a number of revolutionary events. Chahe wo unhone 1929 mein khartal ki thi jail mein, that was a hunger strike. Also, he is known widely for his assaults in the Lahore conspiracy case. He is well known for his role in the assassination of Assistant Superintendent of Police J.B. Saunders on 17th of December 1928 by Bhagat Singh and Shivram Rajguru.
1926 में लाहौर में सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण और जयचंद्र विद्यालंकर ने नौजवान भारत सभा का गठन किया. प्रारंभ में इसका काम नौतिक कार्यक्रम, साहित्यिक और सामाजिक विचारों पर विचार गोष्ठियों, स्वदेशी वस्तुओं, देश की एकता, सादा जीवन, शारीरिक व्यायाम और भारतीय संस्कृति इत्यादि पहलुओं पर चर्चा करना था. और अब हम याद कर रहे हैं भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक अल्लूरी सीताराम राजू को. उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई. अपने एक संबंधी के संपर्क से वे अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए और 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए. सन 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने और अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी. किंतु जब एक वर्ष स्वराज्य प्राप्ति का गांधी जी का स्वप्न साकार नहीं हुआ तो सीताराम राजू ने अपने अनुयायी आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए.
Today we are also remembering Devendranath Tagore, a philosopher and religious reformer who was active in the Brahma Samaj movement. In fact, he joined the Brahma Samaj in 1842. He was the founder in 1848 of the Brahma religion, which today is synonymous with Brahmoism.
उन्होंने बंगाल के विविध भागों में शिक्षा संस्थाएं खोलने में मदद की. इसके अलावा 1863 में बोलपुर में एकांतवास के लिए 20 बीघा जमीन खरीदी और वहां गहरी आत्मिक शांति अनुभव करने के कारण उसका नाम शांति निकेतन रख दिया और 1886 में उसे एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया. यहीं पर बाद में उनके स्वनामध्येय पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर की ने विश्व भारती की स्थापना की.
In fact, the Tagore family, with over 300 years of history, has been one of the leading families of Calcutta and is regarded as a key influence during the Bengal Renaissance. The family has produced several persons who have contributed substantially in the fields of business, social and religious reformation, literature, art and music. And of course, if we are remembering Devendranath Tagore, then his siblings were famous. Nagendranath Tagore was famous, but we all know that Rabindranath Tagore was his son.
और आज ही के दिन 1993 में भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा का निधन हुआ। केएम करियप्पा के नाम से मशहूर कोडनाम मदप्पा करियप्पा भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनका निकेतन किपर था। 30 साल की सर्विस की इन्होंने। 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा राजपूत रेजिमेंट से थे। वो 1953 में रिटायर हुए, फिर भी किसी न किसी रूप में भारतीय सेना को सहयोग देते रहे। 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कोडागु में उनका जन्म हुआ और 15 मई 1993 को उन्होंने अंतिम सांस ली।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग नजीर हुसैन टुडे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। एक्टर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर, ही वॉज फेमस एज अ कैरेक्टर एक्टर इन हिंदी सिनेमा एंड ही एक्टेड इन ऑलमोस्ट 500 फिल्म्स। देवानंद स्टार्ड इन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फिल्म्स दैट ही एक्टेड इन। In fact, Nazir Hussain's father, Shahabzad Khan, was a guard in the railways, and Hussain grew up in Lucknow. He himself worked as a fireman in the railways for a few months and soon joined the British Army during the Second World War. He was posted in Malaysia and Singapore, where he became a prisoner of war. And after being freed, he came under the influence of Subhash Chandra Bose and also joined the Indian National Army. He was accorded the status of freedom fighter and was given a free railway pass for life. In fact, ये तो उनका अगर देखा जाए बहुत पहलू कम लोग जानते होंगे, but we all know him as a very fine actor. He worked in many socialist themed films such as Dhobi Ka Zameen, Devdas and Naya Daur. Munim Ji, which is a 1955 Hindi movie, was the first film that he did with actor Devanand. The story idea was by Ranjan, screenplay and dialogues were by Nazir Hussain, and this team of Mukherjee, Nazir Hussain and Devanand and music director L.T. Barman later collaborated again to produce another movie, Paying Guest. And for that, we have a song from Munim Ji. Let's listen to it.
देखी उमंगे है जवान, रंगों में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे है जवान।
आप भी गाइए ना। देखी उमंगे है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ। पामा पाधा पाधा सपा,
very few people know for sure that he played a very, very instrumental role in the establishment of Bhojpuri cinema. He discussed the possibility of a Bhojpuri cinema industry with the then Indian president, Dr. Rajendra Prasad. He is considered as the Pitama of Bhojpuri cinema. Nazir Hussain created the film Ganga Maiya Tohe Pyari Charhengo in 1963, which is called the first Bhojpuri film. Nazir turned producer with Bhojpuri film Hamar Sansar, and that he also directed that film. Hussain was also known for the hit Bhojpuri film Balam Pardesia in the late
1970s.
Today is also Shaini Ahuja's birthday, a very fine actor who sadly doesn't do any more films, but I think a very, very fine actor, jisne bhi kam film ki, but his character, his role has left a very, very deep impact on people. And he won the Filmfare Best Male Debut Award for Hazaro Khwahish Aisi, and then followed with several hit films like Gangster, Woh Lamhe, Life in a Metro, Bhul Bhulaiya, and Welcome Back. And after completing college, Shaini Ahuja secured his first commercial ad, and that ad was for Pepsi. This instantly brought him into consideration by top ad agencies. Flooded with offers, he worked in over 40 ad films that year, including Cadbury's and Citibank. He also featured in the music video Pyar Ho Gaya for the British Asian band Stereo Nation. Sudhir Mishra, who was auditioning for a film by Pratish Nandi Communications, Hazaro Khwahish Aisi, saw Shaini in the Pepsi commercial and called him to audition for KK's character, Siddharth Tayabji. Upon his request, Mishra also auditioned him for the role of Vikram Malhotra. He was selected from over 200 aspirants for the role of Vikram Malhotra, and then he made his acting debut in the film. So let's listen to a song from one of his films.
Whoa, 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 whoa. You are आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल सहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार
फिल्म बंद करवाई, वो तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो केस ठोक देना उसके ऊपर, केस रेस करने से कुछ नहीं होगा।
और श्रोताओं, आज जन्मदिन है जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग दीवा भी रही हैं। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 1 स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा इन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।
Noted by critics not just for her beauty but also her dancing skills and characters, Dikshit was credited for singularly paralleling her male contemporaries and leading star vehicles in a male-dominated industry. She was among the country's highest-paid celebrities throughout the 1990s and even early 2000s and has featured in Forbes India Celebrity 100 list since its inception in 2012. Her accolades include 6 Filmfare Awards from a record 17 nominations. In 2008, the Government of India awarded her with Padma Shri, which is the 4th highest civilian honour of the country. And उनकी तो अगर फिल्मों की बात की जाए फिर तो बहुत सी टॉप ग्रोसिंग रोमांटिक ड्रामास तो उन्होंने दिए ही, एक पे एक हिट दी, वेदर इट वॉज दिल, बेटा, हम आपकी है कौन, दिल तो पागल है। एंड हर अदर कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स ड्यूरिंग दैट पीरियड वर ऑफ वर्ल्ड राम लखन, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया, साजन, खलनायक एंड राजा।
और इनकी ज्यादातर जो फिल्में थी वो अनिल कपूर के साथ उन्होंने दी और 20 फिल्मों में उन्होंने इनके साथ काम किया जिसमें अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसके अलावा अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का सामना उन्हें करना पड़ा लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से।
सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ मेडले ऑफ सम ऑफ हर नोटेबल सॉन्ग्स, लेट्स लिसन टू इट।
तो श्रोताओं, माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी और ये फिल्म इतनी जो है वो खास नहीं चली लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फिल्मों का दौर संभाला वो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसमें उनकी दीवाना मुत्सा नहीं, सैलाब, वर्दी, देवदास और बहुत सारी फिल्में जो है वो लोकप्रिय रही।
इनफैक्ट सम ऑफ हर रोल्स स्पेशली इन फिल्म्स लाइक अंजाम, मृत्युदंड, पुकार एंड लज्जा दे वर प्रेज्ड बाय क्रिटिक्स एज वेल एंड वी ऑल ऑल्सो नो दैट शी प्लेड द पार्ट ऑफ चंद्रमुखी इन संजय लीला भंसाली देवदास। So that's how we remember Madhuri Dikshit Nene today. And of course, after a hiatus, when she got married, wo wapas kitni back with a bang, wo film aayi thi Aaj Nach Le, which was in 2007, a musical saga. and she then acted intermittently over the next few years. Her highest grossing release came with the adventure comedy Total Dhamal in 2019 and she continued to gain praise for starring in the black comedy Dear Ishqia.
So, iske saath hi ab waqt chala hai aapse anumati lene ka. Hum ummeed karte hain ki aapko hamara ye karyakram zarur pasand aaya hoga.
Thanks for tuning listeners. Have a great day ahead. Namaskar.